Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और जो रमण नहीं करते वो कहते हैं कि महाराज बस निकलने की देर है, सब दुखी ही दे रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, कई बार, कि सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं कि खुश होते हैं, कि मस्त होते हैं, कि गीत गाते हैं, वे दुख की चिंता नहीं करते। लेकिन हमारी सुबह की भी शुरुआत कि पता नहीं अब क्या होगा, इससे ही होती कि कल क्या हुआ था उसको याद करके, कि कल क्या होगा उसको याद करके ही परेशान होते हैं, कि भविष्य क्या होगा, कि भूत में क्या गुजरा उसी को याद करके हम जागते हैं। क्यों क्यों किस लिए? क्योंकि वेदांत वाक्यों में रमण नहीं करते, इसलिए। इसलिए मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ग्रह कर्म काल समय कोई भी दुख नहीं देता आदमी को, कोई भी नहीं। तो आदमी दुखी क्यों होता है? कारण बताया, बहुत प्यारा कारण बताया, मनः परम कारणम् अमनन्ति। सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। अगर वो सुखी है तो दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता, और वो दुखी है तो दुनिया में उसे कोई सुख नहीं दे सकता। कि जिसने ठान लिया है कि उसे दुखी होना है, आप उसके पास कुछ भी ले जाओ, कभी देखना किसी बालक को कि वह अगर खुश है तो तुम उसके साथ कुछ भी करो वो हंसता ही रहेगा, और अगर वो रो रहा है तो तुम कितने भी खिलौने ले जाओ वो रोता ही रहेगा। ये बच्चा नहीं, ये हमारा मन है। बच्चा हमारे मन का प्रतिबिंब है, हमारे मन बच्चे से कम नहीं है। कि जैसे बच्चा अगर खुश है तो आप उसको कुछ भी करो, कि उसको उछालो, कि उसको लिटाओ, कि उसको गुदगुदाओ, कुछ भी करो वो हंसेगा ही, वो रोता नहीं है। कि उसको पकड़ो भी, कि उसके कान भी पकड़ो, कुछ भी करो वो हंसेगा, क्योंकि अभी खुशी में है, अभी मस्ती में है। और अगर वो रो रहा है तो मनाने की सारी कोशिशें फेल आपकी। कि वो रो रहा है तो आप हर तरह से उसे मनाते हैं, कि थोड़ा उठाते हैं, कि थोड़ा घुमाते हैं, कि थोड़ा खिलौने देते हैं, कि थोड़ा ये देते हैं, कि थोड़ा। लेकिन अद्भुत बात है, कमाल की बात है कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं, सारे प्रयास असफल होते हैं, वो तुम रोना बंद नहीं करता है, आप भी तंग हो जाते हैं कि अब क्या करें। दुख इस बात का है कि हमारे मन के साथ में ये रोने की कंडीशन कुछ ज्यादा ही है, कि इसके रोने को, इसके दुख को छुड़ाने के लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं, सारे खिलौने तैयार कर रखे हैं। तुम्हारे घर में जितने इंतजाम है वो खिलौने से ज्यादा नहीं है? तुम्हारे घर में जितने सुख के साधन है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बहलाने के लिए किए गए इकट्ठे खिलौने हैं? लेकिन तुम्हें पता है कि दुखी होने पर ये खिलौने किसी काम के नहीं आते। कि मन में अगर उदासी है तो घर में लगा हुआ एयर कंडीशन आपको कूल नहीं करता। कि मन में उदासी है तो टेलीविजन पर चलने वाले चित्र आपको खुशी नहीं देते, कि चिढ़ करके आप उसे बंद कर देते हैं। कि मन अगर दुख है तो मीठा लगने वाला रसगुल्ला भी तुम्हें बेकार लगता है, कि रहने दो अभी नहीं, कि कुछ इच्छा नहीं। ये सारे खिलौने असफल हो जाते हैं अगर हम दुखी हैं। और हमारे साथ ऐसा कुछ अधिक ही होता है। मना परम कारण मामन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया। इस मन ने सारी दुनिया को घुमा रखा है, हमारे पूरे जीवन को घुमा रखा है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि लोग कहते हैं कि संसार हमको दुख देता है, गलत कहते हैं। हमें, हम अपने मन से दुखी हो रहे हैं। बचे कैसे, बचने का रास्ता क्या है? तो कहा देखो, बच्चा दुखी नहीं होगा अगर उसका पेट भरा हो, बच्चा रोएगा नहीं अगर वो तृप्त हो, कि कोई रोग ना हो, कि कोई बीमारी ना हो, कि कोई पीड़ा ना हो। बच्चे जल्दी नहीं रोते, दो ही अवस्था में रोते। हमारा मन कब खुशी हो तो इसका एक ही कंडीशन है, एक ही बात है, क्या? वेदांत वाक्य सुसदारमन। तो जरा इसको, इसका आहार दिया जाए। मैं शुरू शुरू में किसी के घर पे जाता, लोग लेके जाते हैं ना घर पे, और बाहर कुछ ज्यादा ही परंपरा यहां कम है मुंबई में, कि घर पे लेकर के जाएं तो कहें महाराज कुछ सुनाइए। अच्छी बात है, कम है। बाहर कई जगह ऐसा है कि अगर आप भोजन करने गए तो वो कहेंगे कि महाराज सुनाइए। तो मैं भी कहता हूं कि वहां तो सुन के ही आए हो, अब क्या सुनना। कहते नहीं नहीं आप आए हो तो सुनाओ। तो मैंने कहा अच्छा, खिला रहे हो तो बदले में कुछ लेना चाह रहे हो? कि नहीं नहीं सुनाना तो पड़ेगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, नहीं नहीं सुनाना तो पड़ेगा। ठीक है भैया, तुम यही चुकता करवा लो, वही अच्छा है, खाओ और चुकता करो। ये भी कहते हैं पहले सुनाओगे कि खाने के बाद सुनाओगे? मैं कहता हूं पहले ही सुन लो। तो सुनाता था, ज्यादातर सुनाता था, सबको सुनाता था कि जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन की जरूरत है, ऐसे ही मन को स्वस्थ करने के लिए भजन की जरूरत है। कि शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ भोजन करो, अच्छा भोजन करो, बढ़िया खाओ। ऐसे ही मन को स्वस्थ रखना है तो अच्छा भजन करो। भोजन के बिना शरीर बेकार, भजन के बिना मन बेकार। आप कितने ही व्यस्त हो, कितने ही व्यस्त हो, लेकिन खाना नहीं छोड़ते। छोड़ते कभी नहीं। आप कहते हो कि खाने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी खाना नहीं छोड़ते। जब आप ये कहते हो कि खाने का भी टाइम नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि दोपहर का भोजन, क्या बोलते हो, लंच बोलते हो, वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खाया नहीं है, कि आप चलते चलते भी कुछ लेकर के खाने लगते हो, कि बड़ा पाव भी चलेगा, कि कुछ भी चलेगा। गुजराती है तो कमाल, खाकरा भी रखा होगा तो वो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। बिना भोजन के नहीं रह सकते, नहीं। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुजरातियों की थैली होगा, अगर उसमें पानी पीने का जरूर होगा, कुछ खाने के लिए जरूर होगा, भले ही कुछ हो, इतना हो, लेकिन होगा जरूर, होना चाहिए, खाने के बिना नहीं चल सकता। मैं कहता हूं ऐसे ही भजन के बिना नहीं चलना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हो, कई लोग कहते हैं कि आज बहुत व्यस्तता थी कि भजन छूट गया, गलत। कि हो सकता है कि लंच ना हो, हो सकता है कि आप भगवान के सामने बैठ करके पूजा न कर पाए हो, हो सकता है कि व्यस्तता के कारण ऐसा न हुआ हो, लेकिन भजन होना चाहिए। कि चलते चलते भी, कि गाड़ी में बैठे बैठे भी, कि बस में बैठे बैठे भी, कि ट्रेन में बैठे बैठे भी, कि प्लेन में बैठे बैठे भी, आप भजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब बड़ा पाव खाया जा सकता है तो हरे राम क्यों नहीं बोला जा सकता? कि हरे कृष्ण क्यों नहीं बोला जा सकता? कि नारायण नारायण क्यों नहीं बोला जा सकता? कि वेदांत वाक्यों का चिंतन क्यों नहीं हो सकता? कि आपकी थैली में अगर खाकरा रखा जा सकता है, कि चिक्की रखी जा सकती है, तो गीता क्यों नहीं रखी जा सकती? कि माला क्यों नहीं रखी जा सकती? तुम जानते हो कि कहीं पर भी भूख लगे, कि शुगर डाउन होने लगे, तो कुछ खाने के लिए चाहिए आप पहले रखते हो, इंतजाम करके रखते हो। तो क्यों नहीं आप इंतजाम करके रखते हो कि कभी टेंशन होने लगे तो उससे बचने का इंतजाम आप क्यों नहीं करते हो? कि अगर रास्ते में किसी ने कुछ कहा और मुझे बुरा लगा तो मैं कैसे बचूंगा, कौन बचाएगा, कौन उठाएगा, उसका इंतजाम करके क्यों नहीं रखते हो? और उसका इंतजाम एक ही है कि आप अध्यात्म चिंतन करिए। ये जो प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, कथाएं होती हैं, किस लिए? सिर्फ इसीलिए होती है भाई कि हम आपको बना बना करके सुंदर व्यंजन देते हैं कि इनको रखिए साथ में, और जब भी जरूरत पड़े आप इनको खाइए, ताकि आपका क्या शुगर लो नहीं हो, क्या क्या बोलते हैं, वही होता है, बीपी लो नहीं हो कि शुगर डाउन नहीं हो, है ना, कि आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ रहे। ये प्रवचन इसीलिए है, तो हम रोज बनाते जा रहे हैं और आप रोज लेते जा रहे हो लेकिन बैग भी नहीं रखते हो, कहां रखते हो वो भी नहीं पता हमको, क्योंकि मैंने वो घर में भी नहीं देखे कि यहां बनाए हुए व्यंजन कि महात्मा मेहनत करके आपको बना बना के बढ़िया फ्राई करके देते हैं और आप लेने भी आते हो कि कीमत करते हो, सुबह 7:30 बजे यहां पहुंचते हो, ये सामान्य बात नहीं है मुंबई के लिए, मुंबई में सुबह 7:30 बजे आना उठ करके आसान नहीं है, लेकिन आप आते हो, भले ही कम आते हो लेकिन आते हो। तो आप इन बनाए हुए व्यंजनों की, भोजनों की कीमत समझते हो, लेके जाते हो, लेकिन रखते कहां वो नहीं, जरा हमको बताओ कहां रखते हो? काश मन में रखते होते तो मन कभी दुखी होता ही नहीं, मन में होता तो फिर दुख होने का सवाल ही नहीं है, संसार का कोई व्यक्ति दुखी कर ही नहीं सकता था। तो हम घर में भी दुखी होते हैं कि हम रास्ते में भी दुखी होते हैं, कई बार तो आश्चर्य होता है कि जहां भोजन बन रहा है वहीं दुखी होते हैं, कि कथा सुनते सुनते दुखी होते हैं, प्रवचन स्थल पर भी दुखी होते हैं कि सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, ओह इसका मतलब है कि खाया नहीं, रखा तो था, हाथ में ही था, पास में ही था, लेकिन अंदर नहीं लिया, कि भोजन हाथ में था लेकिन खाया नहीं, तो समस्या खड़ी हुई। आचार्य कहते हैं वेदांत वाक्य ऐसे सुधारण, ये चिंतन के लिए सोचो, भिक्षान्न मात्रण चतुष्टिमंता साधना, सोचना क्या है वो पहले वाक्य में बताया, चिंतन शैली आपकी कैसी हो वो पहले वाक्य में कही, जब भी विचार करने की जरूरत पड़े तो क्या विचार करना चाहिए पहले वाक्य में कहा, आप दुखी होने की आपकी कंडीशन है दुखी हो लेना लेकिन पहले सोच लो, कितनी बढ़िया बात है। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज हमको गुस्सा बहुत आता है क्या करें, मैंने कहा गुस्सा करो, कहते क्या मतलब, मैंने कहा गुस्सा आता है तो रोको मत, गुस्सा करो, भले अजीब बात है लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप कहते हो गुस्सा करो, मैंने कहा मैं कहता हूं गुस्सा करो लेकिन थोड़ा तरीके से कहता हूं, क्या तरीका है, मैंने कहा गुस्सा जरूर करो लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद करो, मेरी बात समझ में आई, गुस्सा करने के लिए नहीं रोक रहा हूं, बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, खूब करो लेकिन 2 मिनट ठहरो। कि कोई व्यक्ति कहे कि पैर फिसले तो क्या करें, तो मैं कहूंगा गिरो लेकिन 2 मिनट रुक करके गिरो, गिर सकते हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ है कि रस्सी पकड़ के रखो, यही एक रास्ता है, कि अगर गिरने से बचना चाहते हो तो रास्ता एक ही है कि आप रस्सी पकड़ लो, पैर फिसलेगा जरूर लेकिन सारा का सारा वजन बोझ कौन झेलेगा, रस्सी पकड़ना आना चाहिए। और मैं कहता हूं कि गुस्सा आए, ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना, आप गुस्से को कितना भी रोको वो जरूर आएगा, ऐसा हो सकता है कि वो बाहर प्रकट न हो लेकिन तुम्हारा वहां अंदर सब सत्यानाश कर देगा, स्वाहा जला के राख कर देगा। लोगों को लगेगा कि इस आदमी को गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर पूछो कि आग लगी है। कि हो सकता है हम सत्संग करते हैं तो दूसरों को दिखाएं, देखो जी हम गुस्सा नहीं करते। एक सज्जन है, वो कहते उन्होंने हमसे कहा, काफी पुरानी बात, कहते स्वामी जी हमको गुस्सा नहीं आता। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा आपको गुस्सा नहीं आता? कहने लगे नहीं। मैं हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहे? उन्होंने कहा ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसको गुस्सा नहीं आता। बोले क्या बात करते हो, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। हो ही नहीं सकता, तरीका अलग अलग है। और मैं आपको बताऊं कि आप जो रोते हो ना, वो रोना और कुछ नहीं है, आपका गुस्सा ही है जो आंखों से प्रकट हो रहा है। कि आपके वश में होता तो आप न जाने क्या कर देते। कि सामर्थ्य के बाहर है आपके सामने की कंडीशन, परिस्थिति आपके सामर्थ्य के बाहर, इसलिए आप रो रहे हैं। था तो गुस्सा ही, और आप कहते भी हैं कि भगवान भी मिल जाए तो नहीं छोड़ूं। था तो गुस्सा ही, लेकिन प्रकट किसके ऊपर करें? क्रोध बदल जाता है, रूप बदल जाता है क्रोध का, लेकिन है क्रोध ही, है गुस्सा ही। तो मैं उसे रोकने के लिए नहीं कहता कभी, शायद शास्त्री भी नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि गुस्सा आए जरूर करो, जरूर करो, कि दो मिनट सोच के करो। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, थोड़ा आश्रय ले लीजिए, थोड़ा पहले पकड़ लीजिए कि आप चढ़ने जा रहे हो, खतरनाक जगह है, थोड़ा सा सिक्योर हो जाइए, क्या बोलते हैं, सुरक्षित हो जाइए, फिर चलिए। गुस्सा करिए कि जैसे आग में अगर जाना हो तो आप फायर प्रूफ ड्रेस पहन करके जाते हो। आग में जाना है, जरूरी है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सुरक्षित हो जाइए। सुरक्षित होने का अर्थ है मन को विचारों से आवृत कर लेना। सुरक्षित होने का अर्थ है मन को वेदांत के विचारों से आवृत कर लेना। सुरक्षित होने का अर्थ है मन को वेदांत के चिंतन से ढक लेना। फिर जाइए, घूमिए, कहीं भी संसार में घूमिए, घर में रहिए, दुनिया में जाइए, और ध्यान रखना कि फायर प्रूफ वाले कपड़े धोखा दे सकते हैं, लेकिन वेदांत वाक्यों से आवृत अगर आपका मन है, धोखा नहीं दे सकता, गारंटी है। मैं तो कहता हूं मुकदमा कर सकते हैं आप, केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। वेदांत वाक्यों का चिंतन करने के बाद भी अगर आपको दुख हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये भिक्षु ब्राह्मण, और वो दिखा रहा है कि देखो हमने अपने मन को दुखों से बचाने के लिए वेदांत से आवृत किया हुआ है, अध्यात्म चिंतन से आवृत। अब आओ जी, दुखी करके दिखाओ हमको। तो वो तो दुनिया को चैलेंज करता है कि आओ दुखी करके दिखाओ हमको। कि मंसूर के हाथ काटे गए और मंसूर रोया नहीं, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया वो रोए नहीं। क्यों? क्योंकि मन अध्यात्म के विचारों से आवृत है, क्योंकि मन सुरक्षित है। कि मीरा ने जहर पिया लेकिन दुखी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म के विचारों से आवृत है। चिंतन कैसा हो वेदांत वाक्येषु, साधना कैसी हो भिक्षान्न मात्रेण, ये साधना है। कि कोई भी परिस्थिति आए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। अशोक बनता है दुखी नहीं होते, ये तैयारी है। तैयारी कैसी है? भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टि मन्तः, कुछ भी आए संसार में, व्यवहार कैसा भी आए प्रारब्ध के अनुसार, अशोक बनता हम दुखी नहीं होते, ये तैयारी है हमारी। ये तैयारी है। क्यों दुखी नहीं होते हो पूछा गया, क्यों दुखी नहीं होते हो? क्योंकि हमने एक ऐसा आशय पकड़ा है कि जहां गिरने की संभावना नहीं है। बड़ा सुंदर लिंक है कि वेदांत वाक्यों का आश्रय प्रारब्ध की विपरीत परिस्थितियों में भी अशोक बनता है, आपको शोक नहीं होने देता, आपको दुखी नहीं होने देता। मैं दोबारा बोलूं, ध्यान देना आप, वेदांत वाक्यों का आशय प्रारब्ध की विपरीत परिस्थितियों में भी अशोक बनता, आपको दुखी नहीं होने देता। ये लिंक कितनी प्यारी बात है। देखो टाइम हो गया, देखो एक बात कह देता हूं फिर बंद करता हूं, हमें भूल ही गया। हाँ ध्यान दे, संसार में सबसे अधिक हमारी उलझन और परेशानी यही थी कि हम सुखी कैसे हों, कि दुख से कैसे बचें, दुख से कैसे बचें, यही हमारी परेशानी थी कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि जीवन में दुख ना आए। और यह उपाय आध्यात्मिक चिंतन ही आपको बचा सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, यह भी पूरी गारंटी वाली बात है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अगले चार दिन है, चार दिन में चार श्लोक पूरा कर देंगे। मैंने कहा ना एक ही श्लोक है उसको समझ लो, बाकी सब पूरा। और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमको ऐसी शक्ति दें कि हम जीवन में कुछ कर सकें। आए
हरिओम। पूज्य महाराज के पुण्य श्री चरणों में वंदन। महाराज जी ने थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छी पंक्ति हमें दी थी, बल्कि जबकि नहीं और दिन गुजर गए। हमने लिखा है पलखे बिछाई थी आपके लिए और आप नजर आए। महाराज जी हकीकत यह है कि आपको सुनने के लिए बड़े तरसते हैं। यह भी हमें आज की जो प्रवचन धारा है उसमें पता चला कि भाई हमें रोना भी अगर सही रीत से आता तो कभी बाद में रोने की दूसरी समय हमें जरूरत नहीं पड़ती। ना हमें रोना आया, ना हर्ष, ना हमें हंसना आया, ना हमें राग करना आया, ना द्वेष करना आया, ना प्रेम करना आया। महाराज जी जब तक हम यहां प्रेमपुरी में कदम नहीं लगते तब तक ऐसा लगता है हम अधूरे ही अधूरे हैं। कुछ यहां भर के लेके जाते हैं मगर वो आपने जैसे बताया वही एक वहां चुक जाते हैं। फिर भी ईश्वर की कृपा है कि आप संतों के आशीर्वाद हमेशा आपके जो शब्द है या जो आपकी जो सुंदर वाणी है कहीं ना कहीं तो हमें कोशिश करती है कि हम वो रस्सी को पकड़ लें। और इसी से आज प्रेमपुरी के सत्संगी जो भी उजागर कहीं ना कहीं होंगे, चाहे अपने कुटुंब में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, उससे महत्व यही रहेगा। और महाराज जी यह चंद हाजरी कहने के लिए तो चंद है मगर बड़े प्रचंड है हम लोग। और कोशिश यह भी रहती है कि यह प्रवचन धारा पूरे दुनिया में कैसे फैले, उसके लिए जैसे आपको पता ही है कि प्रेमपुरी की जो वेबसाइट है www.prempuri.org उस पर लॉग ऑन करके आप दुनिया के कोई भी कोने में ये प्रथा प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन सुन सकते हैं। खुशी की बात यह भी है कि हमारे जो अन्य स्टाफ मेंबर के कोशिश के हिसाब से हम कल से महाभारत कथा का भी हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें सुनने का आयोजन कर दिया गया है। तो प्रातः प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन के पश्चात स्पेशल प्रोग्राम में आपको ये महाभारत की जो कथा कल हुई वो आप वापस सुन सकते हैं। और भी जो दिन की कथाएं हैं या संत प्रवचन या स्वाध्याय प्रवचन है आप सुन सकते हैं। तो यह प्रेमपुरी का नम्र प्रयास है। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।